संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में निन्यानवेवीं गाथा का टीका हो गई थी अमृतचंद्र की। अब उस आगे का विषय पढ़ते हैं। पेज नंबर 208। यहां यह कहा गया है कि जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह को का छोटे सा छोटे अंश परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है और पूर्व रूप से नष्ट होता है, और सर्व परिणामों में एक प्रवाह बना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित एक रूप ध्रुव रहता है। उत्पाद व ध्रुव में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में हैं। ऐसे उत्पाद वही ध्रुव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है, इसलिए द्रव्य स्वयं ही उत्पाद वै ध्रुव्यात्मक है। देखो, यद्यपि गाथा में टीका में प्रदेश और पर्याय मान विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम दोनों को ही बहुत गहराई से समझाया है, लेकिन अब इसमें सिर्फ परिणाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की बात तो उदाहरण के लिए थी, उसमें कोई किसी को शंका भी नहीं है, और न्याय की भाषा में कहें तो उसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेशों का क्रम सुनिश्चित है और वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा कोई स्वार्थ कभी टकराता नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रदेश को यहां से बदल के यहां ले आए, ऐसा हमारा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अब उसमें और ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर्यायों में तो हम बदलने की भावना रखते हैं ना। एक बार हमने संचेती जी का उदाहरण देकर के आपको ये बताया था कि जहां हमें बदलने की गुंजाइश दिखती है वहां हम उसमें प्रयत्नशील हो जाते हैं, और जहां हमको ये पक्का पता लगता है कि हम ये बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है तो हम वहां प्रयत्नशील नहीं होते हैं। ये भले ही हम कहें कि भाई जीव सबसे अच्छी चीज है, इसलिए कोई जीव क्यों चाहेगा कि वो अजीब हो जाए, है ना। वैसे तो मोक्ष भी बहुत बढ़िया है, फिर ये अनंत जीव संसार में क्यों रहते हैं, संसार को क्यों चाहते हैं, इसे क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब, कोई पुद्गल चाहे कि मैं जीव हो जाऊं तो पुद्गल चाहेगा नहीं, पर जीव चूंकि सबसे बढ़िया पर्याय है, अच्छी स्थिति है द्रव्य में भी, इसलिए जीव द्रव्य बदलना नहीं चाहेगा। प्रदेशों में गुणों में कोई कभी ये नहीं कहता है दो चार गुण कम कर दो, बहुत ज्यादा होते हैं, इतने हम तो गिन तक नहीं पाते हैं, देख तक नहीं पाते हैं, क्यों। ऐसे ही प्रदेशों में भी हमें कोई विकल्प नहीं है कि जैसे गुण अनंत हैं ऐसे प्रदेश भी अनंत होते तो मजा आ जाता ना, क्या मजा आ जाता। जीव जैसे लोकाकाश में फैल जाता है ना केवल ही समझ घात में, अलोकाकाश में भी चला जाता है, क्योंकि लोकाकाश तो असंख्य प्रदेश का ही है, असंख्य प्रदेश का ही है ना, पूरा फैलने का चांस तो उसे तभी मिलता ना जब वह लोकाकाश में जा पाता। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आज तक किसी के चित्त में ऐसा विकल्प भी खड़ा नहीं हुआ कि मेरे में गुण कुछ कम है, कि मेरे में प्रदेश कुछ कम है, इनके बारे में कोई शिकायत नहीं हुई। जब जब ऐसी शिकायत होती है कि वो बहुत गुणवान है और मैं नहीं हूं, तो वास्तव में गुण के बारे में नहीं है, वो तो पर्यायों को ही गुण कहते हैं। जब पर्यायों को गुण कहते हैं ना, स्वाभाविक पर्याय, तो उनको फिर वो ऐसा जो जब कहते हैं अच्छे बुरे की बात करते हैं तो पर्यायों के संदर्भ में है। तो ये बता रहे हैं कि एक तो यही बात बताई इसमें, दूसरे बताई है कि उत्पाद व द्रव्य ये तीनों एक समय में होने चाहिए, होते ही हैं मतलब, और हमारे चित्र में वो घटित होना चाहिए। हम एक समय की कोई भी पर्याय है उसको हम पकड़ें तो वो जो विनाश है ना, व्यय है, वो उसका व्यय नहीं है, उसमें व्यय है लेकिन व्यय तो पूर्व पर्याय का है। ऐसा नहीं कि दो पर्यायों में घटित हुआ वो, लेकिन वो पूर्व पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय में अभी है। क्या है? व्यय है। और उत्पाद उस पर्याय का उत्पाद है ही, क्योंकि एक समय में उत्पाद होता है और एक ही समय की उसकी स्थिति है, तो वो उत्पाद ही की तो है ना। अब ये ध्रुव कि एक समय में ध्रुव भी कैसे रह जाएगा, ध्रुव को तो अनंत काल चाहिए है? तो जो अनादि से लेके अनंत काल तक इसका ध्रुव स्वभाव है ना, जिसे अपन त्रिकाली कहते हैं, ध्रुव कहते हैं है? तो वो उसका एक वर्तमान अंश भी है ना, उसमें कोई तोड़ने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है ना, उसका स्वभाव है और वो जुड़ा हुआ है, अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, वो एक वो डोरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अलग अलग भी हैं। एक एक समय की पर्यायें एक दूसरे से भिन्न भी हैं, क्योंकि पहले की पर्याय में सुख था, दूसरी पर्याय में सुख नहीं है, पहले की पर्याय में दुख था, दूसरी पर्याय में अगली पर्याय में सुख आ जाएगा, है ना। हमको बहुत अटपटा लगता है ना कोई चीज, तो जिसकी हम संभावना मान लेते हैं, अथवा मैं ये कहता हूं कि अन्य पर्यायों का क्या अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला होता है, वो वैसे ही कुछ नहीं हो जाता है, मेरे कहने का मतलब। कभी कभी कोई चीज पर्यायें उस सिलसिले को भंग नहीं करते हुए भी इस जगत की दृष्टि में ऐसे लगते हैं कि बहुत अटपटा हो गया। चौबीस तीर्थंकर के हमने चरित्र पढ़े हैं और सभी तीर्थंकरों को वैराग भी हुआ है, पहले राग में भी थे, शांतिनाथ जैसे 96,000 शादियां करके 6 खंड की विभूति वाले थे, और ऐसे जीव वैरागी भी हुए हैं ना, तो वहां हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि देखो तो क्या क्या गजब हो गया, एक समय पहले 96,000 पत्नियों के प्रति राग और एक समय बाद एक भी नहीं। हम क्या समझते हैं कि ये धीरे धीरे टूटना चाहिए था, पहले 2 छूटती फिर 4 छूटती फिर रोजाना 10-10 छोड़ने लगते क्यों ऐसा साल 2 साल में पूरी छूट जाती है, लेकिन ऐसा ही होता है ना। मन जितने भी चक्रवर्ती हैं, चाहे भरत हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे कुंदनाथ हो, यानी एक समय पहले वे चक्रवर्ती थे ना, और एक समय बाद वो नंग दिगंबर मुनिराज हो गए। अब उसकी बात आप छोड़ो, बाहर के परिग्रह की बात, अब उनका 7वां गुणस्थान हो गया, चौथे सीधा 7वां हो जाता है ना, चले जाते हैं, फिर 6वें में आ गए, फिर 6वें 7वें में झूलने लग गए। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि एक समय पहले इतना राग था, वो राग एकदम ये टूट गया, क्यों टूट सकता है ना, लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसी बात मान रखी है कि हम चक्रवर्तियों के लिए कोई आश्चर्य नहीं करते हैं, उन तीर्थंकरों के लिए कोई आश्चर्य नहीं करते हैं, सहज भाव से हम दीक्षा कल्याणक भी वैसे ही मनाते चले जाते हैं, जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक है, अब नमीनाथ का ऐसा हो गया क्या, कि वो बारात लेके गए थे तो जरा बहुत सेंसिटिव बात हो गई क्या, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? एक मिनट में इतना राग था, शादी करने का राग था, सब बात का था पूरा, और एक मिनट बात क्यों? ठीक है, एक ही समय में मिटता है भाई साहब। हर जगह वो वस्तु का स्वभाव हमने समझा होता कि जिनका जितनों का हुआ है राग से वैराग्य, वो एक समय पहले रागी थे और दूसरे समय में वैरागी हो गए। स्वरूप तो वस्तु का ऐसा ही है, इसलिए अद्भुत तो कुछ नहीं हुआ, क्या है ना। अब घर पे ही बैठे होते और कुछ नहीं होता, थकाई मंगाई हुई नहीं होती, उन्हें वैराग हो जाता। फिर पशुओं को तो तब भी देख सकते थे, उनका क्रंदन तो तब भी सुन सकते थे, शादी की बात के लिए क्या जरूरत थी? श्री कृष्ण की ये समझ में नहीं आया कि इस शादी से इसे जोड़ने की क्या जरूरत है? पहले तीव्र राग का निमित्त जोड़ाया और बाद में तीव्र वैराग का निमित्त जोड़ाने की कोशिश करने लग गए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ, पहले एक समझ में आ रहा था कि राग में फंस जाएगा तो उलझ जाएगा तो मेरा झंझट संकट खत्म हो जाएगा। फिर लगा कि नहीं नहीं, नहीं राग वाले तो हम जैसे बहुत लोग हैं जो उसमें भी खूब उलझ रहे हैं और राग में भी, स्त्री पुत्र आदि के राग में भी उलझे रहते हैं, वो धमाधम भी करते रहते हैं, है ना, झगड़े टंटे भी करते रहते हैं, राजनीति भी करते रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं, इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं है, चलो ये करना चाहिए। उनके विकल्प कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नैमिनाथ का वैराग तो स्वकाल में ही हुआ है ना। तो मैं तो यहां तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक समय पहले की पर्याय चौथे गुणस्थान की हो सकती है, एक समय बाद की पर्याय सातवें गुणस्थान की हो सकती है। हम गोमर सार में पड़ी है आवक जावक, कौन से गुणस्थान में किस गुणस्थान में जा सकता है और किस गुणस्थान से कौन से में आ सकता है, तो उसमें बताया है ना। तो ऐसा एक हो गया तो क्या हो गया है? अभी क्या समझते हैं लोग, कभी घर गृहस्थी छोड़ के चले गए। मैंने बहुत किताबें पढ़ी तो ऐसे पागलों जैसी बातें, मतलब पागल जैसे लगते हैं लोग, कैसे वो समझने में आपको समझाने पहुंच गए, पुण्य मिनाद को समझा रहे। ये अपने तीर्थंकर बोलते नहीं है, ये बातें सब बातें पक्की है ना, लेकिन वे तो पहुंच गए और उसने मिनाद जवाब दे रहे नहीं, और ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत समझाया, फिर उन्होंने मानी नहीं है? नहीं, आराम से रहना, घर में रहना, पत्नी के साथ रहना, राज्य करना, उनको राज और पत्नी ही दिखती है, ये नहीं दिखती है कि वो तीन कसाई के अभाव हो गया जो राग का, वो कहां से आएगा? समझे क्या कहा मैंने, समझ रहे ना। वो जो एकदम छठवें सातवें गुणस्थान में चले गए ना, अभी एक ही कसाय का अभाव था अनंतानुबंधी का, अब प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव और हो गया, वो एकदम कैसे आ जाएगा? तेरे समझाने से आ जाएगा है? कभी तुम समझा लेके लेके वो समझते हैं, बस बाहर का है, छोड़ दिया ले लेंगे, फिर क्या है? माने वो बिल्कुल बाहर बाहर से देखते हैं कि वो अंदर में कितना क्या परिवर्तन हुआ है, हैं? और वो परिवर्तन उनके अनंत पूर्ववर्ती परिणामों के क्रमबद्ध, जो जितना उसको वो जरूरी है ना, उतना उनको परिणामों का ऐसा हुआ भी होगा। पहले तो पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव है, अन्यथा वो पर्याय एक समय की सिद्ध नहीं होगी, एक समय पहले की पर्याय और एक समय बाद की पर्याय और एक बीच की पर्याय, एक बीच की है एक, तो ये तीन पर्याय पकड़ी तो ये तीनों एक सी हो जाएंगे, नहीं हो सकती मेरे कहते। कदाचित जैसे सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान है तो अनंत काल तक केवल ज्ञान होता रहा ज्ञान गुण में से, ऐसी भी पर्याय हैं, लेकिन जगत में ऐसी तो नहीं है जिनमें आश्चर्य होता है। जगत का स्वरूप तो यही है, तो वो बताते हैं कि वो जो कंटिन्यूटी वाली चीज है वो जिस समय उत्पाद और व्यय हुए हैं, उत्पाद वैसी बोलते भाषा ऐसी है कि पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद, लेकिन दो पर्याय नहीं है, वो तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा व्यय नाम का धर्म इसमें है, ऐसा है, और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा उत्पाद नाम का धर्म इसमें है। ख्याल में आ रही बात में है? क्यों पॉइंट ख्याल में आ रहा है? एक आदमी की भी पकड़ में आ जाए ना तो बस मेरे को संतोष है कि फिर कहना बेकार नहीं गया, बाकी तो अपने अपने भाग्य की बात है, जितना वो उपयोग लगाएगा उतनी समझ में आएगी। देखो तो वो तीनों का एक समय है। अब वो जो द्रव्य एक समय का पकड़ा अपन ने, तीनों में एक समय का है, लेकिन वो द्रव्य पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय से अखंड रूप से जुड़ा है, और वो उत्पाद व्यय एक दूसरे से जुड़े नहीं है। वो जो जुड़ान है उसमें, उसको द्रव्य कहते हैं, और जो पृथकता है उसको उत्पाद व्यय कहते हैं। अन्यथा एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ का कोई महत्व देंगे तो फिर वो बदल ही नहीं सकता, तो वो व्यय होगा ही नहीं ना, क्योंकि व्यय होगा तो पूरे द्रव्य का हो जाएगा। फिर आपने ऐसी भी भाषा सुनी होगी, इसमें भी आती है और जगह भी आती है, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि द्रव्य तो ध्रुव है, उसमें उत्पाद व्यय होता ही नहीं है, पर उत्पाद व्यय तो पर्याय का होता है। सुना होगा आपने कहीं बार, पर्याय बदलती है, उसमें द्रव्य तो बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहता है, एक कोने में लेटा रहता होगा। अब मैं आपसे दूसरे पक्ष बताना चाहता हूं कि पर्याय फर्याय नहीं पलटती है, वो द्रव्य ही पलटता है। सुनना, द्रव्य पलटना माने क्या? देखो ये प्रोजनसार है, अब जो ऐसा हो गया तो पलट गया कि नहीं पलट गया? तो प्रोजनसार से समयसार हो गया, तो नहीं पलटा ना, प्रोजनसार था ना इसका नाम, तो वो नहीं पलटा, वो ये पलट गया। तो द्रव्य में ऐसा पलटना होता है, उस पलटने का नाम पर्याय है। आप कहते पर्याय पलटती है, पर्याय पलटती है, रोटी रोटी खाती है, क्यों पर्याय पलटती है? शब्दी भाषा ही गलत है, अब समझ में आए तुम्हारे में? क्योंकि उस पलटने का नाम पर्याय है। एक दफे मैंने शायद बताया था आपको कि हम भक्तांबर पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, जितने भी छंद उन्होंने पढ़ाए होंगे, तो पढ़ाते पढ़ाते आठवें छंद पे आए, तो उसमें कह बोलो लगा मारभ्यते, मैं हे भगवान आपकी स्तुति आरंभ करता हूं। ये कोई महाकाव्य तो है नहीं, 2000 पेज की किताब तो है नहीं, 48 तो काव्य है, 8 तो इनने इसमें ही निकाल दिए, पर अब तो ये शुरू कर रहे हैं, क्यों स्तुति अब तो शुरू कर रहे हैं, क्यों? हमने ऐसा पूछा गुरुजी को, अब शुरू कर रहे हैं जी, तो अभी तक क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा अभी तक भी स्तुति कर रहे थे। ऐसी होती है स्तुति, हे भगवान हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, हमें इतनी बुद्धि नहीं है, फिर भी हम बहुत कम बुद्धि वाले हैं, फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं, तो कब करोगे जरा करके बताओ ना, हम उसे देख लेंगे तुमने ठीक करी करी करी, ये कर ही तो रहे, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, हम में भाषा में हमारी ताकत नहीं है, हम बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं, इसी का नाम भगवान की स्तुति है। और क्या करने वाले हैं, पूरा भक्तांबर पढ़ लो, बस ऐसी ऐसी बातें हैं। बहुत लोग नाराज हो सकते हैं जो मेरे भक्तांबर के बारे में जो विचार है ना, उन्हें सुने तो नाराज हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता नहीं हूं, मुझे सुमंत भद्र के स्तोत्र बहुत बढ़िया लगते हैं कि है क्या इसमें, उसका डर नहीं लगता, शेर का डर नहीं लगता, हाथी का डर नहीं लगता, फलाने का डर नहीं लगता, युद्ध का डर नहीं लगता, सात भय से रहित हो जाता है, सबका डर नहीं लगता, झगड़ा खत्म। तो हम लोगों ने मुझे बना दी कि ये बीमारी दूर करने का छंद है, कौन सा 45वां बोलो, उदभूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दसाम मुपेगता चुत जीवेता सा। बस क्या कहते हैं, उद्भीत भीषण, ऐसा भयंकर रोग हुआ, भीषण माने भयंकर, कौन कौन जलोदर, वो पेट में पानी भर जाता है, निकालते हैं वे डॉक्टर लोग, उद्भीत भीषण जलोदर भार भुगना, भार भुगना माने बहुत जोर की भूख लगना, जो समुद्र भद्र को हो गया था, कितना ही खाओ और पच जाता है फटाफट। हमारी तो समस्या है कि खाना पचता नहीं है, एक दिन शादी विवाह में गरज खा के आ जाए तो फिर तीन दिन तक रेचक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। क्यों उनको ऐसी बीमारी, भार भोगना समझे ना, भार भोगना माने जैसे भाड़ में, भाड़ समझते हो, वो चने मने सकते हैं, वो गरम गरम लगाते हैं, उसमें कितना ही ईंधन डालो वो जल जाता है ना, कितना ही ईंधन इस पेट में डालो अब भस्म हो जाए, भस्मक व्याधि जिसे आप बोलते हो उसे बोलते भार भोगना रोग का नाम। उद्भीत भीषण जलोदर भागे रोना सोचाम दशाम उपेगत चुत जीवेतासा, सोचनी अवस्था हो गई, सोच्याम दशाम मुपगता, आज क्लियर है ना, अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसी सोचनी दशा हो गई और चित जीवित आशा, अब जीवन की आशा नहीं रही, क्यों, बस इन्हें बताया है। फिर क्या होता है, तो पाद पंकज जिन्हों मृत दिग्ध देहा मृता भवंती मकर ध्वज रूप हुआ, मृत मनुष्य लोग मकर ध्वज जैसे रूप वाले हो जाते हैं। मकर ध्वज कौन होता है, वो कामदेव, समझे ना, कामदेव जैसे सुंदर हो जाते हैं, बढ़िया एकदम हो जाते हैं। अब उन्होंने देखा क्या, अब उनका लगा बोले जाओ बोले जाओ, हमने तो बहुत बोला लेकिन हमारा तो जुकाम भी ठीक नहीं हुआ, हर रोग की अलग बीमारी है भाई, यदि वो कुष्ठ रोग दूर करना हो तो भक्तांबर पढ़ा सिद्धचक विधान कराया जाता है, इसमें तो क्लियर लिखा था ना, सभी बीमारियां लिखा ना, कौन कौन से, ये भार भुगना ऐसी 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 सब नाम, इसमें कोई एक का दो का नाम नहीं दिया है, ये सभी ठीक हो जाएंगी लेकिन कुछ नहीं होती है, तो ऐसी ऐसी सब बातें लिखी है मैंने। चलो आचार्य जयसेन, वो ऊपर का क्लियर हो गया, पहले में क्या था बोलो, क्या क्लियर हुआ है, हाँ बोलो बोलो, खड़े हो बोलो, खड़े हो गए बोलो,
हाँ
क्या क्या होते हैं एक ही पर्याय में घटित,
हाँ
पहली दफे तूने दो ही बोले थी है क्या, नहीं है, बैठ जाओ, ऐसा है तुम लोग जो सुबह पाठ करते हो दोपहर में पाठ करते हो बहुत गलत बोलते हो, सही नहीं बोलते, सही ध्यान से पढ़ते नहीं है। मैंने शांति जी को बोला है कि ऐसे अनाड़ियों को खड़ा मत करो, पहले आप उनसे सुन लो, और आपको लगे कि बिल्कुल शुद्ध पड़ रहे तो ही उनको यहां खड़ा करो है? आप सोचते हो चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि सुनने वाला तो कोई यही नहीं ऐसा नहीं, शुद्ध पढ़ना आना ही चाहिए। वो ऐसे जैसे जबान में कुछ आ जाता है दांत में, खाते वक्त वो अटक जाता है ना, वो अटक ऐसे बीच में यदि वो अशुद्ध बोलता है तो वो मतलब फ्लो भंग हो जाता है। पहले भी मैं कई दफे कह चुका हूं साहब का चार तो पड़ा ही होगा, नहीं अक्षरो न्यूनो मंत्रो निहंती विश्ववेदनाम, अक्षर से न्यून नहीं होना चाहिए, ये सब मंत्र हैं जो आप पढ़ते हो, बहुत अद्भुत चीजें हैं ये, क्योंकि बहुत गहरा तत्व ज्ञान हर एक एक गाथा में, वो आचार्य देव की गाथाएं हैं ना, पूरा पूरा तत्व ज्ञान बहुत गहराई से भरा हुआ है। आज की गलतियां बताऊं कि कहां कहां गड़बड़ हुई थी है? अब मुझे याद नहीं है, छोड़ दो आचार्य जयसेन इस गाथा के भाव को मुक्तात्मा पर घटित करके समझाते हैं, अंत में लिख देते हैं कि जिस प्रकार यह परमात्म द्रव्य एक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप से परिणमित होता हुआ भी सत्ता लक्षण वाला कहा गया है, उसी प्रकार सभी द्रव्य एक ही समय में उत्पादादि रूप से परिणमित होते हुए सत्ता लक्षण वाले हैं, यह अर्थ है। माने ये सत्ता काय की प्रकरण चल रहा है, सत्ता का प्रकरण चल रहा है, सत्ता स्वरूप, सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता माने अस्तित्व नाम का गुण, जगत में सब चीजें हैं वो हैं का स्वरूप क्या है, अनंत गुण है ना, उसमें से हम अलग सत्ता गुण को परिभाषित करें तो कैसा होगा, क्योंकि अनंत गुण में सत्ता गुण का रूप है, इसलिए अनंत गुण भी अस्तित्व वाले हैं, ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है, चारित्र का अस्तित्व है, सुख का अस्तित्व है, वीर का अस्तित्व है, ये अस्तित्व है कहां से आया, वो अस्तित्व गुण का उनमें रूप है उसकी वजह से आया, और अनंत गुण में ज्ञान गुण का रूप है, तो सारे गुण ज्ञान स्वरूप है, ख्याल में ना, चेतना है, अपना पूरा आत्मा चेतन है ना, आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण में चेतन नाम का एक गुण है, तो वो ही चेतन है कि बाकी के सब गुण भी चेतन है, कि पूरा आत्मा चेतन है, पूरा आत्मा है ना, तो ऐसा इनका परस्पर में बहुत गुथाव है, वो हमारी समझ में आना चाहिए। देखो वे कभी अलग नहीं हो सकते ना गुण, ना प्रदेश और ना पर्याय, और कभी टूट नहीं सकते, बस ये दो बातें हमारी समझ में आना चाहिए। कौन कौन सी? वे कभी टूट के अलग नहीं होंगे और कभी एक नहीं होंगे, अलग अलग भी रहेंगे अनंत गुण। अभी इनका गुथाव कैसा है मुझे कोई अच्छा उदाहरण ख्याल में नहीं आता, कि आत्मा का एक प्रदेश है उसमें सब अनंत गुण है, फिर हर प्रदेश में अनंत गुण है, तो गुण तो वो एक ही है, असंख्य होना चाहिए ना, असंख्य प्रदेश में जाने के लिए असंख्य ज्ञान गुण होना चाहिए कि नहीं, वो एक ही गुण सब में चला जाएगा प्रदेशों में, ऐसा एक गुण दूसरे में जाता है, ऐसे किस तरह से अंदर से इनका गुथाव है और किस तरह इनका अलगाव है। अपन कहते हैं ना वो परिवार, तो भाई साहब 50 आदमी का परिवार है, एक एक चौका चलता है, क्या समझ आए ना, कभी बे न्यारे उनको बिल्कुल अलग हैं कि आप दिखते ही नहीं कि अलग हैं। मैंने अच्छा तो आप राम स्वरूप को श्याम स्वरूप बोल देते होंगे, आपको राम स्वरूप और श्याम स्वरूप में अंतर नहीं दिखाई देता? देखो अंतर भी दिखाई देता है और अंतर नहीं है वो भी दिखाई देता है, और वो दोनों हैं, और दोनों में परस्पर विरुद्ध नहीं है कि अंतर होगा तो वो अंतर नहीं होने का विरोधी हो और अंतर नहीं होना होने का विरोधी हो, ऐसा नहीं है। तो जैसे निपट गए ना, उक्त कथन से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। अब ये बात आई है दूसरी, है ना, कौन से कथन से? हाँ, इस पादवैत रोग के इस स्वरूप जो बताया है उससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। यह सुनिश्चित होता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस विधि से जिस समय होनी है उस द्रव्य की वह पर्याय उसी विधि से उसी समय उत्पन्न होगी, आगे पीछे नहीं। ये बात सिद्ध होती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि क्या लिखा है, क्रमबद्ध कहां है, कौन से शास्त्र में है, हैं? आप शास्त्र का नाम बताओ, सब ऐसे ही चलता रहता है। क्रमबद्ध कौन से शास्त्र में है, वो कहते फलाने गुणस्थान में फलाना होता है, वो कौन से शास्त्र में है हमें निकाल के बताओ, और निकाल के ले जाओ तो बस कुछ ना कुछ ऐब निकाल के रिजेक्ट कर देते हैं। क्या ये तो पंडित का है, ये तो हिंदी भाषा का है, हैं? तो संस्कृत भाषा प्रमाण है, वो हिंदी भाषा प्रमाण नहीं है। संस्कृत भाषा के हम ऐसे ऐसी किताबें ला के आपको बता दें कि हमें झूठ झूठों के श्रद्धाता है। वो कहते ही हैं कि हम ये कथा जो लिख रहे हैं हम वो झूठ की कथा लिखते हैं, उसके नाम ही ऐसे हैं उनके, क्या ये काल्पनिक कथाएं हैं, ये सब नहीं है। तो संस्कृत भाषा सब प्रमाण होता है, हम लोग कैसे दिमाग में क्या घुस गया है, और हिंदी भाषा सब गलत होता है। मैंने भाषा से कोई आदमी करता, कोई प्रांत से करता है, कोई किसी से करता है, कोई आचार्य की बात कहता है। ऐसी राजस्थान में एक बहुत बड़ा पंडित हो गया है, टोडरमल जी की बात नहीं कह रहा हूं, उनसे भी बड़ा, जिसका नाम है पंडित आसाधन, नाम सुना ना, 1000 वर्ष पहले मांडलगढ़ है ना, इधर कहां इधर राजस्थान के इसी कॉर्नर में है, हाँ। तो मांडलगढ़ में जो ऊपर किला है उस किले के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर में वो बैठ कर रहते थे, लिख करके साहित्य लिखते थे। उन्होंने मुनियों का आचरण कैसा होता है इस पर शास्त्र लिखा है, और सबसे बड़ा शास्त्र है वो अनंगार धर्मामृत, और उसमें नयों का वर्णन ऐसा है पानी जैसा एकदम बहता है। ये जो नए चक्र पढ़ते हो तुम लोग, आसाधर जी ने लिखा है उसमें। कितने बड़े विद्वान थे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और संस्कृत भाषा पर कितना गहरा अधिकार था। भाषा से क्या होता है, भाषा पे तो किसी का भी कैसे भी अधिकार हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि वो कोई अभिनंदनीय नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अभी एक बात मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं कह देता हूं। एक महावीर जी में एक पंडित मूलचंद जी रहते थे, आप जानते हो, ऐसे टोटे हाथ के थे, आप लोग जानते होंगे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान, कालिदास जैसे काव्य लिखे। एक विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी, उनका नाम पंडित भूरामल जी था, वे भी ऐसे ही विद्वान थे। कालिदास जैसे संस्कृत में काव्य लिखे, और लिखे हैं उनने दादा, ऐसे विद्वान संस्कृत के। उनकी एक किताब मुझे मिली कि संस्कृत भाषा में लिखी, क्या था संस्कृत भाषा में कैसी लिखी मालूम, राजुल और नेमी के काव्य पे है ना, उसमें लिखी, और उसका नाम रखा उन्होंने कोई दूत, वचन दूत। तो कालिदास की एक पंक्ति वो तीन पंक्तियां अपनी तो पूरा मेघदूत उसमें गर्भित कर दिया है? इतना और बिल्कुल बहुत बढ़िया मंदाक्रांता छंद फलाने छंद जो भी उस छंद उसमें है ना उन छंदों में संस्कृत की बहुत बढ़िया। तो मैं उन्हें जानता था पर्सनल और उनकी मैं बहुत महिमा भी सुनी थी परिचय भी था मेरा तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई तो मैंने उसके साथ में उसको किताब को मंगाई यहां वहां से ढूंढ ढांड करके पूर्वार्ध तो नहीं मिली उत्तरार्ध मिली है? तो उस उत्तरार्ध को मैंने पढ़ा तो भाषा इतनी बढ़िया परमार्जित ये सब एकदम ए बन लेकिन जो बातें लिखी अब मैं उसे क्या बोलूं मैं कोई शब्द नहीं बोल सकता कुछ जैसे बिल्कुल जैन धर्म की जीरो ही समझ नहीं हो मैं क्या बोलूं मैं तो जमीन पे गिर गया ऊपर से करके जब हम सबसे पहले पढ़ने गए थे पाठशालाओं में ना तो जिस विद्यालय में भर्ती हुए थे उसके वो हेडमास्टर थे उस वक्त तो यद्यपि उनने हमें पढ़ाया नहीं क्योंकि उनके असिस्टेंट लोग उनके पास ही पहली क्लास में आएगा तो कोई पढ़ेगा ना लेकिन हम 6 महीना रहे उसमें जब जो वो प्रत्याय थे फिर वो महावीर जी आ गए लेकिन सब कुछ तत्व है ना कुछ है ही नहीं क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं ये समझा रहे हैं नेमिनाथ को समझा रहे हैं वो कोई भी नागरिक समझा रहे हैं पहली राजुल पहुंच गई जो राजुल समझा रही है राजुल आई तो राजुल का बाप पहुंच गया है मैं समझा रहे हैं छोड़ो छोड़ के ये तकलीफ पाओगे ये तकलीफ पाओगे ये तकलीफ पाओगे 12 मासा लिखा तो उसमें ये लिखा यहां इतनी इतनी तकलीफ है तो हमारे साथ चलो वहां हम सब आराम से रखेंगे इन्हीं संयोगों का नाम है। तो मुझे उस वक्त विचार आया वो उन्होंने कह रहा था कि वो 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच गए 3 कषाय का अभाव हो गया अब तुम्हारी ये बेवकूफ की बातें भी समझना तो क्या सुनेंगे और अपने यहां तीर्थंकर बोलते ही नहीं है किसी की सुनते ही नहीं है क्यों दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान हो जाए तक वे बोलते ही नहीं है तो वहां बुरुआ नहीं ऐसा श्वेतांबरों में तो है ही बहुत बहुत ज्यादा श्वेतांबरों के तो बहुत हैं दिगंबरों में भी ऐसा क्या करें बोलो मैं सिर्फ इस बात के लिए सुनाई ये कहानी आपको किस बात के लिए कि भाषा के पीछे तुम मर रहे हो भाषा के इतने बड़े विद्वान हो भाव बिल्कुल जीरो है? अब भाषा का ज्यादा महत्व है कि भाव का तुम्हारी समझ में ये तत्व ज्ञान आ जाए क्या क्या चल रहा है 3 लेने पड़ी है पर मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सब कुछ नक्की है जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव में जब जो जैसा होना है जिस निमित्त से उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी निमित्त से वैसा ही नियम से होगा ख्याल में ना आपकी मां ये भाव समझ में आ जाए काम हो गया समदर्शन हो जाएगा हाँ हो जाएगा मोक्ष के हाँ मोक्ष भी हो जाएगा क्या रह गया बाकी यदि उसको असली समझ में आ गई तो उसके माथे से कर्तृत्व का भार उतरे बिना रहेगा नहीं यदि विकल्पात्मक ज्ञान में भी आए तो भी अनंत शांति हो जाती है यदि असली श्रद्धा में आ जाए तो उसका कहना ही क्या है, है? यानी उसमें से एक पंक्ति का भाव भी मैं नहीं लिख सकता हूं कि अपने में लिख रहा हूं क्यों क्या इसमें मैं लिख नहीं लिख सकता क्या है ऐसी बात मैं करूंगा हमको इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए कि नेमिनाथ क्या क्या है उनके मुख में क्या डालना उनके दिमाग में क्या डालना उनके कान में क्या डालना राजुल क्या है उग्रसेन क्या है कौन व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है कैसा व्यक्तित्व है ये हमको नहीं समझना चाहिए क्या आपको जो मन में आए वो सब हम बोल सकते हैं यहां देखो यहां पढ़ रहा ना ठीक है मैं सही जगह हूं। यहां क्षेत्र के नियमित कर्म के एक पैरा छूटेगा जाना। उक्त प्रकरण में सर्वत्र अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह वाक्य जो कि अनेक बार आया है ध्यान देने योग्य है। इसका अर्थ तो आपको बताया है ना, अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह। प्रवाह माने पर्यायों का होता है, प्रवाह परिणामों का और उसका प्रदेशों का विस्तार। तो अब ये प्रवाह की बात है कि परस्पर अनुस्यूति से रचित, परस्पर कौन, एक पर्याय और दूसरी पर्याय में अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह है वाक्य जो कि अनेक बार आया है ध्यान देने योग्य है। और मोतियों के हार के उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस प्रकार हार में मोतियों का क्षेत्र अपने क्रम में नियमित है, उसी प्रकार झूलते हुए हार में उनके प्रकटने का काल भी नियमित है। जो मूर्तियों का डोरे में पड़ा हुआ हार का, जब उदाहरण शांति जी आया तो मेरे दिमाग में एक विकल्प बहुत चलता रहा कि ये डोरा ये कभी भी तोड़ के निकाला जा सकता है। इसका उदाहरण दिया जो कभी नहीं टूटे उसके लिए क्या। तो जब वो इसलिए मुझे संगमरमर की माला और वो जो बेकार मैंने झूठा किया ना कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं फटाफट निकाल लेंगे, हिमात आ लेंगे, कैसे पागल हैं, मोतियों का हार हम तो रोज ही ना बदल लेते हैं, उनके स्थान बदल लेते हैं, सब जगह कर देते हैं, ऐसे गूंथ गूंथ देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि इतने इतने इतना विवेक इतना नकल नहीं है कि यहां पर सिर्फ हम उस डोरे को नहीं तोड़ें तो उनका क्रम नहीं बदल सकते, ऐसा है। इसका उदाहरण इसका है क्योंकि वस्तु में तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो डोरा भी अटूट होना चाहिए ना। इन कहां से लाए आचार्य ने वो अटूट लोहा उन्होंने तो यही माला देखी होगी, कौन सी, तो लोग मंदिर में बैठे बैठे जपते रहते हैं ना जो कल तुम लोगों ने यहां रख दी थी। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि तुम इस डोरे और माला के मोतियों में वो जो टूटने वाले स्वभाव को दिमाग में से निकाल देना। समझ लो वज्र का दो डोरा है, मैं सीधी सच्ची बात है, ऐसा कोई जादू मंत्र करो कि वो डोरा टूटे नहीं और मोतियों का स्थान बदल जाए। क्यों, कि ऐसा नहीं हो सकता है, बस यही बात हमें समझानी है कि वो ऐसा अटूट दोहे में जुड़ी हुई है। पर्याय देखो, मोतियों के क्षेत्र क्रम से नियमित हैं, उसी प्रकार झूलते हुए हार में उनके प्रकटने का काल भी नियमित है। अब ये झूलते हुए क्यों कह रहे हैं, माने हार माला कहीं उसको ऐसी रख लो, बस ऐसी माला, ये उदाहरण ऐसा, अब झूलते हुए ऐसा दिखता है, ऐसी झूल रही होगी, मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर झूलते हुए का क्या अर्थ शांति जी, यहां फिर बहुत माथा मारा मैंने तभी जब किरमज पर्याय लिखी थी, तब जो इसमें लिखा है सब, वो झूलते माने एक मोती पे से हमारी उंगली हटा के हम दूसरी मोती पे गए, तो उससे से हटा के तीसरे पे गए, तो वो ऐसी ऐसी जो घूम रही ना उसको वो झूलते हुए कह रहे। मुझे घूमते हुए कहना चाहिए, वो झूलना तो बने ऐसा ऐसा समझते हैं। तो दादा ख्याल में नहीं बात क्या कह रहा हूं, वो घूमते हुए हैं, झूलते हुए नहीं। तो अभी क्या बात समझा रहा है यहां पर, जो मैं अभी पढ़ूंगा, मैं पहले समझ लो तुम। मैंने गंगा जी को उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की थी कि गंगा से एक पानी वहां से बहा तो वो कहां कहां जाएगा उसका वो रास्ता नक्की है ना। तो ये नक्की है कि यहां यहां जाएगा, तो वो जिस रफ्तार से जा रहा है तो ये भी नक्की है कि वो कब कहां पहुंचेगा। समझ रहे ना, ऐसा समझ लो अपन बाई कार यहां से दिल्ली जा रहे हैं और इतने एक घंटे की 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, 250 किलोमीटर दिल्ली है तो और अब हम जानते हैं कौन से गांव कितने किलोमीटर दूर है तो हम बता देंगे ना, अच्छा निकले उन्हें 1.5 घंटा हो गया तो वो कहां पहुंच गए होंगे, मिडवे पे पहुंच गए जो भी समझ लोगे, हमें तो नाम ही भूल भाल गया, कोटपूतली पहुंच गए होंगे, समझ गए क्या मिलता है रास्ते में, समझ गए ना। तो अपने से अंदाज लगा लेते हैं ना कि इस रफ्तार से गए हैं और इस दिशा में इस रोड से गए हैं तो अभी इतने यहां पहुंचे होंगे। तो ऐसे ही एक एक क्षेत्र से एक एक काल बंधा है, ये कह रहे हैं, समझ रहे ना, ये इसमें लिखा है एक एक क्षेत्र से एक एक काल बना है। मतलब क्या कि जब वो चल रहा है, वो माला चल रही है अपने हाथ में तो अब वो माला अपन पूरी करेंगे जितने में, समझ रहे ना, 108 गुड़िया हैं और मान लो कि हमने 108 सेकंड में पूरी की तो एक एक सेकंड में एक एक माला की ये बात है क्या, नहीं जान सकते ना अपन, पता नहीं ये तुम्हारे प्रतिष्ठाचारी सब जने शांति से बैठ जाओ, अभी मैं मंत्र बोलूंगा माला जाप करूंगा, अब आप तो सुहा सुहा बोलते जाना 10 मिनट लगेंगे। तुम्हें कैसे पता 10 मिनट लगेंगे, हम रोजी ना बोलते हैं ना, इतने गुड़िया हैं इतने माला हैं, समझे ना, तो वो नक्की है ना एक एक समय, ऐसे ही बता रहे, देखो पढ़ता हूं आप ध्यान से, उसे झूलते हुए हार में उनके प्रगटने का काल भी नियमित है। एक एक दिखेगा ना तुम्हें तो कब कौन सा मोती दिखेगा ये भी नक्की है, क्योंकि वो एक रफ्तार से घूमती है, घड़ी घूमती ना जी, अपन जानते हैं अभी अपन सब नहीं जानते हैं कि ये घड़ी 3 घंटे में 3 नंबर पे आ जाएगी। क्षेत्र से काल बंधा है वो ये कह रहे हैं, विस्तार से प्रवाह बताना है ना। जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में उसके प्रदेश का विस्तार नियमित है निश्चित है, उसी प्रकार उसका काल प्रवाह भी नियमित अर्थात निश्चित है। क्षेत्र का विस्तार जैसे नक्की है तो काल का प्रवाह भी नक्की है। यहां क्षेत्र के नियमित क्रम के माध्यम से काल संबंधी नियमित क्रम को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि क्षेत्र संबंधी क्रम नियमितता आसानी से समझी जा सकती है। उसके लिए उदाहरण मिल जाता है ना सामने रखा हुआ, अब ये मिल गया ना ऐसा एक ऐसे एकदम इतने कितने टुकड़े कर लो, ये कर लो ये कर लो, अब काल का ऐसा नहीं है, काल का वो नष्ट ही हो जाता है, वो है ही नहीं, वो एक समय रहता है पकड़ में और है अनादि अनंत। जिस प्रकार द्रव्य को ठीक है संपूर्ण विस्तार क्षेत्र से लक्ष्य में लिया जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक ही है ना, उसी प्रकार द्रव्य को तीनों काल के परिणामों को एक साथ लक्ष्य में लेने पर उसका काल त्रयकालिक एक है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आप सुनना इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, त्रयकालिक ध्रुव, ध्रुव मान का अर्थ भी वही है और त्रयकालिक का अर्थ भी वही है, लेकिन वो उनकी महिमा ये है ना कि वो अनादि अनंत आत्मा, अब वो पर्यासा मिल नहीं पड़े इसके माध्यम से ही तो पर्यायों का अखंड प्रवाह शामिल है, ये तो बता ही रहा नहीं, फिर त्रयकालिक का तो अर्थ ही नहीं समझे, ध्रुव का ही अर्थ नहीं समझे, फिर त्रयकालिक जिसे हम बोलते हैं तो त्रयकालिक तो जब होगा वो तो दो चीजें अलग अलग हैं तो उनका कोई जुड़ान नहीं होता, वो एक दूसरे से जुड़े होंगे तो ही वो एक वस्तु त्रयकालिक कहलाएगी, तो भाई ऐसा क्लियर क्यों नहीं लिख दिया, तो वो कहे त्रयकालिक होते ही तो वो द्रव्य हो जाता है, क्योंकि त्रयकालिक होना तो द्रव्य का लक्षण है, पर्याय का लक्षण तो एक समय का होना है। अब आपके वो पर्यायों का पिंड है तो पर्यायों के पिंड को तो द्रव्य कहते हैं, तो तुमने पर्याय क्यों नहीं कहा, पर्याय क्यों नहीं कहा, हमने निकाल दी सब पर्याय, पर्यायों के पिंड को भी निकाल दिया है? अरे किसने नहीं कहा, आगम में तो सब जगह कहा है, तेरी इतनी स्थूल पकड़ है कि तेरी समझ में नहीं आता तो कोई क्या करे है? कहां पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश प्रदेश है, यही है ना, उसी प्रकार प्रवाह क्रम के अंश का नाम पर्याय है। यद्यपि यह कथन संपूर्ण द्रव्यों की अपेक्षा से है, पर यहां विस्तार क्रम को यदि आकाश द्रव्य की अपेक्षा समझें तो सुविधा रहेगी। पहले कहा था ना, हमने जीव पे नहीं घटाया, आकाश पे। जिस प्रकार अनंत प्रदेश ही आकाश का, जो प्रदेश जहां स्थित है वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों में प्रदेशों का क्रम नियमित है। यही बात यहां मोतियों के हार के दृष्टांत से स्पष्ट की गई है कि मोतियों के हार में जो मोती जहां स्थित है उनका स्थान क्रम परिवर्तन संभव नहीं है। यदि आकाश अचल द्रव्य है और जीव और पुद्गल सचल सक्रिय द्रव्य है, अंतर क्या है ना आकाश में और जीव पुद्गल में, ऐसे बदलते रहते हैं, संकोच विस्तार में होते रहते हैं, चलते रहते हैं, यहां के यहां होते रहते हैं ना अंदर अपनी मर्यादा के भीतर। हाँ, यद्यपि आकाश अचल द्रव्य है और जीव और पुद्गल सचल द्रव्य है, तथापि झूलते हुए हार की बात कहकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार झूलते हुए हार में भी मोतियों का स्थान क्रम नहीं बदल जाता, वो झूलेगा तो बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि यदि हम एक किताब को लपेट लपाट के रूमाल को ऐसा कर दिया तो क्रम बदल गया, ऐसा नहीं बदलेगा। ये कहने का मतलब है कौन है ये? उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश आदि द्रव्यों का विस्तार क्रम नियमित है, उसी प्रकार उनका प्रवाह क्रम भी नियमित है। जिस प्रकार नियमित विस्तार क्रम में फेरफार संभव नहीं है, उसी प्रकार नियमित प्रवाह क्रम में भी फेरफार संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक प्रदेश का स्वस्थान निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक परिणाम का स्वकाल भी निश्चित है। जिस प्रकार सिनेमा की रील की लंबाई है, उस लंबाई में जहां जो चित्र स्थित है वह जो कल मैंने सिनेमा का उदाहरण दिया था ना, वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार चलती हुई रील में कौन सा चित्र किस क्रम से आएगा यह भी निश्चित है, उसमें भी फेरफार संभव नहीं है। आगे कौन सा चित्र आएगा भले ही इसका ज्ञान हमें ना हो, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आएगा तो वह अपने क्रम में ही। हमें इतना ज्ञान हो तो हमारा कभी जो आना है वो ही आएगा, इतना ही पर्याप्त है। किस समय कौन सी पर्याय आएगी ये तो जब हमें केवल ज्ञान होगा तब हम जानेंगे, और उतने जानने की जरूरत भी नहीं है सम्मा दर्शन होने के लिए। इतना ही जानने की जरूरत है कि जिस पर्याय का जो समय नक्की है वो उसी समय आएगी, और समय नक्की है और किसी ने किया नहीं है, वो अनादि से है और अनंत काल तक का है, कोई काम बाकी नहीं है, सब बिल्कुल अप टू डेट तैयार है। फिर हम क्या करें कि तुम्हारा काम सिर्फ जानना है, जानना तुम्हारा स्वभाव है तो जानो बस, है ना, कैसे में करें नहीं कर तो सकते, यही तो जानना है। जैसे सोपान, अब जो सीढ़ियों की उदाहरण दे रहे हैं, सीढ़ियों का क्षेत्र अपेक्षा से अपरिवर्तनीय निश्चित क्रम होता है। देखो माला से सीढ़ी पे इसलिए आए कि वो कोई अभी सीढ़ी ये पहली दूसरी तीसरी चौथी तो ऐसी आसानी से बदल जाए ऐसा नहीं है, पूरी बिल्डिंग तोड़ तार के बदलो तो वो अलग बात है। ये माला को तो जरा झटके में तोड़ सकते हैं, है ना। उसी प्रकार उस पर चढ़ने का भी अपरिवर्तनीय कालक्रम भी होता है। अपरिवर्तनीय कालक्रम मतलब अब 100-200 सीढ़ी ले लो, 10-5 सीढ़ी से काम नहीं चलाओ, तो तो आप इस 100 सीढ़ी वाला एरिया इतने समय में यहां से चल के वहां पहुंच जाएंगे, तो किस समय आपका पैर किस सीढ़ी पर पड़ेगा ये नक्की है कि नहीं? वैसे जाना जा सकता है, जाना जा सकता है तो नक्की है, आठ घंटे बाद जो बिल्कुल बीच की सीढ़ी होगी उस पर हम पहुंच जाएंगे। अब क्या कह रहा है, उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र पर हम चलेंगे तो जैसे उस क्षेत्र का क्रम नक्की है और वो क्रम अपरिवर्तनीय है, उसका परिवर्तन संभव नहीं है उसमें, ऐसे ही वो काल का भी क्रम है और वो भी ऐसा ही अपरिवर्तनीय है। नहीं तो तेज चल जाऊंगा जल्दी पहुंच जाऊंगा ऐसा नहीं, जैसे द्रव्यों में नहीं होता है कि तेज चल जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, फलाने जगह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मुझे बताया था नहीं, रेल रेल भी है ना, तो कहते भाई ये लेट होती है ना, लेट होती है तो कवर कर लेती है। क्या बोलते हैं कवर कैसे कर लेती है, कि वो जो इंजन वाला है ना थोड़ा तेज चला देता होगा इंजन, कुछ नहीं तेज में नहीं चलाता है, वो तो वैसा ही चलाता है, वो तो बना हुआ है, वो तो उस ट्रेन में इंजन में बंधा रहता है, उससे ज्यादा चाहे इतना दबाए वो तेज होती ही नहीं है। जैसे गाड़ी में से अनाड़ी लड़कों को देते हैं ना तो 60 पे बांध देते हैं, वो चाहे जितना वो क्लच दबाए वो 60 से ज्यादा रफ्तार पे जाएगी ही नहीं। तो फिर ये कवर कैसे हो जाती है, ये क्या करते हैं, जब टाइम टेबल बनाते हैं ना तो उस टाइम टेबल में एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में घंटा आध घंटा का गैप रख लेते हैं कि कभी लेट होगी तो उसके लिए, समझे ना, मतलब वो जैसे यहां से लगना है एक घंटा तो उसे 70 मिनट गिनेंगे, तो ऐसे वो 70 में कवर, वो एक घंटा पीछे हो गई तो 2-3 जंक्शन पास होंगे तब तक वो सही उसी रफ्तार से चलती हुई और उस सही ट्रेन पे आ जाएगी। जो कवर होना बोलते हैं ना, कवर कैसे हो जाती है, कवर ऐसे होती है, एक नियम है इनका कि समय के पहले गाड़ी पहुंच तो सकती है लेकिन रवाना नहीं हो सकती। जिस टाइम रेलवे स्टेशन का जो समय लिखा है उससे पहले रवाना नहीं हो सकती, यदि वो सरवाना पहले हो जाए तो सवारी दावा कर दे लाखों रुपए का, तुमको हर जाना देना पड़े, क्योंकि उस हिसाब से वो स्टेशन पे पहुंचेगा, पहले पहुंच गई तो खड़ी रहेगी, लेकिन जो रवाना होने का टाइम है उसके पहले वो रवाना नहीं कर सकते, कवर करने के लिए कैसा करे, ऐसा नहीं जाए, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही वस्तु का स्वरूप में सब व्यवस्था है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, और यहां तो कहते गाड़ी लेट होती ही नहीं है, यह तो एक एक समय नक्की है अनादिकाल से, क्षेत्र के प्रवाह के साथ काल के प्रवाह को समझाया है, और वो जैन दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हो गया ना पूरा, कल पढ़ने को बचा कुछ गए, बस हो गया तो चल सकती हूँ।